अंतिम दृश्य अखिल की कार में। अखिल अब कार में बैठा था अकेला। सामने हाईवे का सूनापन और उसके अंदर की बेचैनी दोनों एक जैसे लग रहे थे। उसने मोबाइल निकाला और भाई अर्जुन का नंबर डायल किया। भाई वो पेपर्स क्या थे मैंने जिन पर साइन किए? उधर से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर अर्जुन की आवाज आई। तुम्हारा ही भला किया है अखिल, सब तुम्हारे नाम की इज्जत के लिए था। मैंने तुम्हें बचाया है एक लड़की की जिम्मेदारी उठाकर जो अब तुम्हारी बीवी है। अखिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, दर्द और गुस्से की बीच की मुस्कान। भाई तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने मुझे बांध दिया, अब ये खेल तुम्हें भी महंगा पड़ेगा। स्थान राजवंशी हवेली, रात के 10:30 बजे। अंधेरे में डूबे शहर के ऊपर जैसे आसमान भी अखिल के मन की तरह घने बादलों से भरा हुआ था। हवेली के बाहर दो गार्ड उसकी कार के आते ही सीधा खड़े हो गए, लेकिन अखिल की आंखें किसी तूफान से कम नहीं लग रही थीं। वो बगैर किसी से कुछ कहे तेज कदमों से हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी चाल में गुस्से की आग थी और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ जल चुका हो। हॉल में उसकी एंट्री ऐसी थी जैसे कोई युद्ध भूमि में अकेला योद्धा कदम रख रहा हो। हॉल जहां सब चुप थे। दादाजी अपने लकड़ी के झूले पर थे, चेहरा शांत लेकिन कठोर। यशवर्धन अपने बगल में हाथ जोड़कर बैठे थे, माथे पर कुछ पछतावे की परछाई। माँ चुपचाप आंखें झुकाए बैठी थीं। अर्जुन जो अब तक सबसे मुखर था खड़ा था दीवार के पास। सोफे पर बैठी चंचल कोई कुछ ना बोल रहे थे, लेकिन उनका चेहरा साफ बता रहा था कि तूफान आने वाला है। और तभी धड़ाम। अखिल ने ड्राइंग रूम की साइड टेबल पर अपना बैग पूरी ताकत से पटका। कौन था ये जो मेरे नाम पर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर गया? सन्नाटा। कौन था वो जिसने मेरे नाम पर मेरी मर्जी के बिना किसी और के साथ मेरी शादी करवा दी, और वो भी उस लड़की से जिससे मैं? उसके लफ्ज हलक में अटक गए, लेकिन चेहरा अब भी गुस्से से चल रहा था। तुमने क्या सोचा भाई? अब वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ा कदम कदम। तूने क्या सोचा था कि बहुत अच्छा काम किया है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अखिल मेरी मंशा बुरी नहीं थी। तो क्या ये शादी मेरी मर्जी के बिना कराना मंशा है या साजिश? मैंने साजिश नहीं की, अर्जुन अब थोड़े ऊंचे स्वर में बोला। मैंने सिर्फ वो किया जो पापा और दादाजी की मर्जी थी, और ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। ये शट अप, अखिल की आवाज अब तलवार की तरह कमरे में गूंज रही थी। मुझे मत समझा कि क्या सही था। मैं उस लड़की से नफरत करता हूं, उसे देखना नहीं चाहता, और तुम लोगों ने? उसकी आंखें अब दादाजी की ओर घूमी। आपने भी? दादाजी ने अब पहली बार आंखें उठाई, उनकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। अखिल, खानदान की इज्जत हर रिश्ते से बड़ी होती है, और ये रिश्ता अब हमारे नाम को साफ कर सकता है। नाम? अखिल हंसा, एक कड़वी गूंजती हंसी। आप लोग नाम के पीछे पागल हो गए हैं, और मेरा जीवन, मेरी मर्जी, वो सब कोई मायने नहीं रखती? माँ ने धीरे से कहा। बेटा उस लड़की की हालत भी? माँ, अखिल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उस लड़की की हालत कैसी है, क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब जब तुम सबने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर ही लिया है तो मुझसे हमदर्दी का नाटक मत करो। एक पल की खामोशी। अर्जुन ने अब धीरे से आगे बढ़कर कहा। भाई हम सब जानते हैं कि तुम गुस्से में हो, पर यह शादी बस एक लीगल कदम था। इससे तुम्हारा नाम बचेगा, मीडिया शांत होगा। नाम बचेगा? अखिल की आंखें अब अर्जुन के चेहरे में धंस गईं। और जब मैं इस रिश्ते को नकार दूंगा तब क्या बचेगा? जब मैं कहूंगा कि मैंने मजबूरी में साइन किए थे पेपर्स, तब कौन सा नाम बचाओगे तुम सब? अब सबके चेहरे पर पसीने की एक महीन रेखा बन चुकी थी। यशवर्धन, पिताजी ने अब खुद उठकर कहा। अखिल, हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए फैसला लिया। वो लड़की? मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। अकेला बाग की तरह बुरे कमरे को देख रहा था। मेरी लाइफ कोई फिल्म नहीं है जहां स्क्रिप्ट पापा, भाई और दादाजी लिखेंगे। ये सब जबरदस्ती है, धोखा है, और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तूफान से पहले का आखिरी वाक्य, अर्जुन ने थक कर कहा। भाई एक बार रैना से मिल लो, देख लो, समझ लो, शायद कभी नहीं। अखिल की आवाज अब लोहे की तरह ठंडी थी। मैं उससे ना मिलना चाहता हूं, ना उसे देखना चाहता हूं, और ना ही उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूं। और याद रखो, ये मेरा आखिरी शब्द है।
उसने पलटकर आखिरी बार पूरे हॉल को देखा। तुम सबने मेरी पीठ पीछे जो किया है उसके बाद अब मैं तुम सब पर भरोसा नहीं कर सकता। अखिल अपने कमरे की ओर जाता है। कमरे की ओर जाते वक्त उसके कदम भारी थे लेकिन आंखें क्रोध से लाल। पीछे हॉल में सब सन रह गए थे। आज पहली बार अखिल उस परिवार के सामने एक अजनबी बनकर खड़ा हुआ था, उस परिवार के लिए जिसने उसे हमेशा अखिल राजवंशी उत्तराधिकारी कहा पर शायद कभी अखिल इंसान समझा ही नहीं।